संसार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय पर चर्चा है। इसके चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। नूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिय प्रीतय आप्रणोति न साधु मन्ये यदात्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आस देह नूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यदात्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आस देह नूनं प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यतात्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आस देह मदांध कुरुते करता है विकर्म, शास्त्रों में वर्जित पाप कर्म, यत जब इंद्रिय प्रीतये इंद्रिय तृप्ति के लिए आप्रणोति प्रवृत्त होता है, न नहीं साधु अच्छा या उपयुक्त मन्ये मानता हूँ, यतः जिससे आत्मनः आत्मा का अयम यह असन क्षणभंगुर अपि यद्यपि क्लेशदः कष्टदायक आस संभव हो सका देह शरीर। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वे भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में इंद्रिय तृप्ति के निमित्त मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसी भावना से घोर अंधकार में नरक प्राप्त होता है। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा, ये चार प्रकार के पाप कर्म हैं। ये ऐसे साधन हैं जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। वेदों का कथन है, असंगो हियम पुरुषः, जीवात्मा वास्तव में इस भौतिक संसार से किसी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु इंद्रिय सुख उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण उसे ऐसी भौतिक अवस्था में पड़ना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए, उसे और आगे भौतिक देह के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिताश्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय के सार को कहने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे।
सर्वशास्त्राधिपियुषः सर्ववेदैकसत्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नाद्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते असाधु साधु तदायिन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कण्ठयोस्फुरा।
पांचवें स्कंद पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कुछ अध्यायों में थोड़ा सा अंतर हो गया काफी समय से, इसलिए संक्षेप में इस स्कंद के सार को कहते हैं। चौथे स्कंद में हमने स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत महाराज के भाई का नाम क्या था? उत्तम है ना, उत्तम ही था ना, प्रियव्रत और उत्तम दोष। तो उनके वंशजों का वर्णन सुना, ध्रुव महाराज की कथा, फिर प्रचेताओं तक उनके वंश चले, और फिर प्रचेताओं के बाद कोई योग्य राजा ना होने के कारण ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु इत्यादि में जाकर नारद मुनि की इच्छा के विरुद्ध प्रियव्रत महाराज को बाध्य किया कि वो पुनः पारिवारिक जीवन स्वीकार करें, राज्य स्वीकार करें। वे तो चले गए थे तपस्या करने के लिए, तो फिर उन्हें पुनः आना पड़ा। फिर इस स्कंध में प्रारंभ से प्रियव्रत महाराज की कथा हुई, उनके चरित्र का वर्णन, उनके कार्यकलापों का वर्णन, और फिर उनके पुत्र अग्निध्र, उनका वर्णन हुआ कि कैसे प्रियव्रत महाराज के इतने महान भक्त के पुत्र होते हुए भी उन्होंने पितृलोक जाने की कामना कर ली, वैकुंठ की कामना नहीं की। और इसका कारण, क्योंकि जिस समय अग्निध्र का प्रवेश प्रियव्रत महाराज के द्वारा उनकी पत्नी के गर्भ में कराया जा रहा था, तो उनके हृदय में थोड़ी बहुत काम वासना थी, और इस वासना के चलते अग्निध्र हालांकि बहुत अच्छे राजा थे, बड़े धार्मिक थे, लेकिन फिर भी इच्छा हुई कि वे पितृलोक जाएं, और उन्होंने पितृलोक को प्राप्त किया। उनके पुत्रों में से एक पुत्र थे नाभि महाराज, और नाभि महाराज ने विवाह किया मेरु देवी से, और उन्होंने प्रार्थना की भगवान को, तपस्या की उन्होंने कड़ी भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने के लिए। तो जब भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा आपके जैसा पुत्र चाहिए, भगवान के जैसा तो दूसरा है नहीं, इसीलिए भगवान ने कहा मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और फिर ऋषभदेव के रूप में मेरु देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए और हम लोग अब तक ऋषभ देव के चरित्र और उनके कार्यकलापों को कैसे वो रहे सुन चुके हैं और इस अध्याय में ऋषभ देव की शिक्षाएं हैं। ऋषभ देव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग अब इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो भगवान शिक्षाएं देने आते हैं, आनंद लेने नहीं आते हैं, क्योंकि आनंद तो वो गोलोक धाम में वृंदावन वैकुंठ में आराम से ले रहे हैं। उनको यहाँ कोई आनंद भौतिक जगत में आनंद ढूंढने नहीं आते हैं भगवान। हाँ, भगवान जहाँ भी रहते हैं वो आनंद में रहते हैं, तो इसीलिए लीला करते रहते हैं, लेकिन उनके आने का उद्देश्य वो नहीं है। उनके आने का उद्देश्य होता है जीवों को शिक्षाएं देना, जिसके द्वारा जीव अपनी मूल स्थिति में वापस स्थित हो सके। ये उद्देश्य होता है भगवान का आने का, अर्थात भगवान का अवतार ये कृपा है हम सब पर, क्योंकि भगवान आते हैं, लीला करते हैं, हम सबको आकर्षित करते हैं और ज्ञान देकर जाते हैं अपने आचरण से, अपनी शिक्षाओं से या अपने भक्तों के द्वारा इस ज्ञान को वो प्रकट करते हैं। तो इसीलिए ये अध्याय है ऋषभ देव का, जो अपने पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया। वैसे ये केवल पुत्रों के लिए नहीं है, क्योंकि ऋषभ देव के सारे पुत्र भक्त थे। ऋषभ देव का हृदय शुद्ध है और शुद्ध हृदय से, जब शुद्ध हृदय से संतान को उत्पन्न किया जाता है तो वो संतान भी शुद्ध होती है। और ऐसा नहीं है कि कर्मों के द्वारा इत्यादि संतान आती है, वो तो है ही, लेकिन फिर भी अगर संस्कार करते हुए हृदय को शुद्ध रखते हुए संतान उत्पत्ति का कार्य किया जाए तो फिर शुद्ध संतानें उत्पन्न होती हैं। इसीलिए ऋषभ देव का हृदय तो पूर्ण शुद्ध है, वो तो भगवान है, तो उनके पुत्रों में कोई अशुद्ध नहीं था, सब भगवान के भक्त हैं, तो उनको उपदेश देने की क्या आवश्यकता है, और वो भी कैसे उपदेश, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए, वे लोग तो वैसे भी नहीं कर रहे थे, तो उनके द्वारा हमारे लिए ये उपदेश उन्होंने, सारी मानव जाति के लिए उन्होंने उपदेश दिए हैं। सो इस पूरे अध्याय में भागवत धर्म का चर्चा हुई है, भागवत धर्म को प्रकट किया गया है। अब भागवत धर्म क्या है? ये साधारण धर्म से ऊंचा है। ज्यादातर व्यक्ति धर्म का पालन करता है कष्टों से दूर जाने के लिए या मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ये भागवत धर्म नहीं है। जिस धर्म में कष्टों से दूर जाना सिखलाया जाए या फिर केवल मुक्ति की बात की जाए, वो साधारण धर्म है। शास्त्रों में भी कुछ शास्त्र होते हैं जिन्हें धर्म शास्त्र कहा जाता है और कुछ शास्त्र होते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्र कहा जाता है, और भक्ति शास्त्र धर्म शास्त्रों की तुलना में श्रेष्ठ माने गए हैं। जब अर्जुन पहले अध्याय में भगवान से चर्चा कर रहा था या भगवान को कारण दे रहा था युद्ध नहीं करने के, तो उसके सारे कारण शास्त्र पर आधारित थे, उसने कोई भी कारण इंद्रिय तृप्ति पर आधारित नहीं दिया। शास्त्र के आधार पर पाप लगेगा, शास्त्र के आधार पर परंपराओं का नाश होगा, शास्त्र के आधार पर। तो अर्जुन जो कह रहा था वो धर्म शास्त्र के अनुसार था, लेकिन भगवान ने उसको नकार दिया, भगवान ने स्वीकार नहीं किया उसको उनके इस, हालांकि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कितना साधु स्वभाव है, अपने भोग को त्याग कर दूसरों की चिंता कर रहा है, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया और भगवान ने उसको भक्ति शास्त्र पढ़ाया। तो इसीलिए भागवत धर्म ये साधारण धर्मों से ऊंचा है, उन धर्मों से जो आपको केवल मुक्ति की ओर ले जाते हैं, उन धर्मों से जो कष्टों से निवारण चाहते हैं। क्योंकि जब कष्ट से निवारण हो जाता है व्यक्ति फिर इंद्रिय तृप्ति में लगता है, या कष्ट का निवारण चाहता ही इंद्रिय तृप्ति करने के लिए है, तो वो सच्चा धर्म नहीं है। इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही, शुरुआत में ही ऐसे सारे धर्मों को बाहर फेंक दिया गया, कैटक धर्म कहा गया। लेकिन इस अध्याय में भागवत के ऋषभ देव भागवत धर्म को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भागवत धर्म के क्या सिद्धांत हैं, तो उनको प्रस्तुत करते हुए वो बताते हैं कि मनुष्य जीवन कैसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करने से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय से व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर तक अपने आप को उठा सकता है। ये सारे श्लोकों में वो वर्णन करते हैं और फिर वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति को अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठाना है तो एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के अधीन रहकर उनकी शिक्षाओं का पालन करता है जिसमें कष्ट होता है, हम सब जब किसी के अधीन रहते हैं, किसी का पालन करने का प्रयास करते हैं, मन और बुद्धि करने नहीं देती, मन और बुद्धि हमें उससे दूर ले जाने का प्रयास करती है। तो इसीलिए जब गुरु के अधीन रहकर उनके उनसे कड़ाई से नियमों का पालन किया जाता है तब हमें तीन चीजें प्राप्त होती हैं जिसका वर्णन इन श्लोकों में किया गया। पहली भक्ति, हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। दूसरा हम वैराग्य को प्राप्त करते हैं या अनासक्ति को प्राप्त करते हैं। और तीसरा सहनशीलता, तितिक्षवा कारुणिका। तितिक्षवा मतलब भक्त का एक लक्षण है जो सहन करता है, सहनशीलता है। भगवान भी भगवत गीता में कहते ताम स्तितिक्षस्व भारत। तो ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं अगर हम प्रमाणिक गुरु की शरण जाते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। और फिर आगे इस अध्याय में भरत महाराज का वर्णन करते हुए वो भक्तों का गुणगान करते हैं, ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं और ब्राह्मणों से श्रेष्ठ वैष्णवों को स्थापित करते हैं। और अंतिम भाग इस अध्याय का ऋषभ देव के वैराग्य का वर्णन करता है जब वो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो प्रयास करेंगे आज इस अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। वैसे हम लोग नियम से रोज एक अध्याय कर लेते हैं लेकिन क्योंकि इतना महत्वपूर्ण अध्याय है, हमारे लिए व्यवहारिक ज्ञान देने वाला है, हो सकता है आज ये समाप्त ना हो पाए समय पर, तो कल इसको और समाप्त करेंगे। तो पहले तीन श्लोकों में इस अध्याय के मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है या उसका क्या महत्व है, ये पहले तीन श्लोकों में ऋषभ देव वर्णन करते हैं। तो बताते हैं कि मनुष्य जीवन में तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, ये तपस्या बहुत आवश्यक है अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए। हम सब की सत्ता, सत्ता अर्थात हमारी चेतना इस समय अशुद्ध अवस्था में है। प्रभुपाद समझाते हैं कि व्यक्ति को, मनुष्यों को, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, स्वतः तपस्या को ग्रहण करना, और किसके लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो भक्ति में की गई तपस्या के दो लक्षण हैं। पहला वो स्वतः स्वीकार की जाती है और दूसरा वो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए की जाती है। अगर किसी तपस्या में ये दो लक्षण नहीं हैं, तो वो केवल कर्मों का फल है। जैसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी कड़ी तपस्या करता है, कष्टों को सहन करता है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति कार्य करता है, सुबह सुबह घर से निकल जाता है, ट्रेन लेता है, बस लेता है, ऑफिस पहुंचता है, फिर उसमें पूरा दिन कार्य करता है, फिर 2-3 घंटा वापस आता है, रात्रि में थोड़ा बहुत मैथुन सुख कर लेता है पत्नी के साथ, और फिर वही अगला दिन फिर वही तपस्या। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इतनी तपस्या वो करता है किस लिए? वो थोड़े से सुख के लिए। तो ये तपस्या को तपस्या नहीं कहा जाता, क्योंकि दो लक्षण नहीं है। पहला, स्वतः इस तपस्या को नहीं लेता, स्वेच्छा से धारण नहीं करता, उसको करना होता है क्योंकि धन कमाना है, परिवार चलाना है, समाज में रहना है, जीवन चलाना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है। इसीलिए पहला लक्षण नहीं है कि वो स्वेच्छा से उसको लेता है। जितने भी लोग ऑफिसों में काम करते हैं, अगर उनको बोल दिया जाए कि आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना घर पे रहिए, सैलरी घर पे आके मिलेगी, या फिर उनको कहा जाए कि आप लोग अगर नहीं भी आएंगे कोई बात नहीं, जिसको प्रेम हो वो लोग आकर से काम करें, कितने लोग जाएंगे? हाँ, सारी इंडियन नेवी बंद हो जाएगी, राइट? कितने लोगों को प्रेम है? देखिए सुबह सुबह भागते हैं वो लोग, कहीं 5 मिनट भी देर नहीं हो जाए, क्या प्रेम है उनको? हमारे ऑफिसर्स को देखना चाहते हैं कहीं देर नहीं हो जाए, कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो भागवत सुनने वालों को है, 8:30 के पहले आकर बैठ जाते हैं, ये उनका प्रेम है ना? आप सब बिल्कुल 2 मिनट लेट नहीं करते हैं, क्यों? प्रेम है भागवत श्रवण में, है ना? तो ऑफिस जाने वालों को कोई प्रेम नहीं है। ऑफिस जाने वाले अगर उनको वही धन बिना जाए मिल जाए, उनको कहे कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए पहला जो लक्षण है तपस्या का, स्वेच्छा से नहीं करते हैं। आप सब स्वेच्छा से तपस्या कर रहे हो, रोज हमें सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप सब सोचते हो कि चलो कैसे भी बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा शब्द पड़ जाएगा गलती से कान में, तो उद्धार हो जाएगा। और दूसरा लक्षण श्री कृष्ण की प्रसन्नता। व्यक्ति जो अन्य तपस्या करता है, उसका लक्ष्य होता है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके, धन कमाए, परिवार चलाए, आनंद ले सके। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। तो मनुष्य जीवन प्रभुपाद कहते हैं केवल इसलिए मिला है कि हम स्वेच्छा से तपस्या करें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जिसको पहले अध्याय में, पहले श्लोक में, पहले 3 श्लोकों में वो समझा रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामन, कष्ट कम, इतना कष्ट करने के लिए नहीं मिला है। कष्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को आलसी होना चाहिए। बहुत कष्ट है बाहर, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, क्यों? आराम से रहेंगे, खाना पीना मिलेगा, नहीं। यहां पर ऋषभदेव ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल कष्ट नहीं लेना है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान, काम वासना की पूर्ति के लिए हमें कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी मिलेगा। अगर आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में आनंद लिखा है, वैसे भी आएगा, कोई आपके कर्म आपसे छीन कर ले जा नहीं सकता। इसीलिए देखिए कभी कभी व्यक्ति को धन अचानक मिल जाता है, उसके कर्म में लिखा है, और कोई व्यक्ति जीवन भर कार्य करता रहता है, लेकिन जीवन के अंत तक, जीवन में प्रारंभ में गरीब, अंत गरीब मरता है, उसके कर्म में नहीं है। हाँ, उसके पुत्र बहुत धन कमा लेते हैं, कभी कभी ऐसा देखते हैं व्यक्ति गरीब मरा, उसके बाद पुत्रों ने कुछ किया, उन्होंने धन कमा लिया, और फिर बुढ़ोते हैं कि हाय हाय, थोड़ा पहले किया होता तो पिताजी भी देख लेते कि हमने कितना धन कमाया है। तो ये कर्म है, कर्मों से मिलता है सुख, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन मनुष्य जीवन में हमें भागना है तो कृष्ण के पीछे भागना चाहिए, ये जीवन की पूर्णता है। तो ये पहले तीन श्लोकों में मनुष्य जीवन के महत्व को वो समझाते हैं कि मनुष्य जीवन विशेष मिला है तपस्या करने के लिए। और हर एक व्यक्ति को प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, ऋषभ देव उदाहरण देख प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें कृष्ण भावना मृत हरेक को सिखलानी चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये सीखना चाहिए, नहीं तो जीवन में सुख नहीं आ सकता। तो ऐसे ये मनुष्य जीवन का महत्व है। फिर उसके आगे के तीन श्लोकों में, चौथे श्लोक से लेकर छठे श्लोक, चौथा श्लोक जो हमने ये पढ़ा नूनम ब्रह्मत्ते कुरुते विकर्म, तो चौथे श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक ऋषभ देव कारण देते हैं जीव का अलग अलग शरीर लेने के। तो पहले वो बताते हैं कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, मनुष्य जीवन में तपस्या कीजिए, भगवान की प्राप्ति कीजिए। और जो व्यक्ति नहीं करता, कभी प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, मनुष्य जीवन में मनुष्य भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, फिर इतने सारे लोग इतने शरीरों को क्यों ले रहे हैं, क्या आवश्यकता है 84 लाख योनियों में घूमने की, क्या कारण है? तो अगले तीन श्लोकों में उसका कारण देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन में तो व्यक्ति तपस्या नहीं करता, निश्चित उसे नीच योनियों में जाना पड़ता है, लेकिन वो बताते हैं, चार कारण देते हैं इन श्लोकों में कि व्यक्ति को अलग अलग योनियों में घूमना पड़ता है। पहला कारण वो देते हैं इंद्रिय तृप्ति से आसक्ति, इंद्रिय भोग में आसक्ति, ये प्रमुख कारण है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि केवल इंद्रिय भोग आसक्ति के कारण बारंबार हमें जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो बारंबार जन्म, क्योंकि हम इंद्रिय भोग से आसक्त हैं। जब तक इंद्रिय भोग से आसक्त रहेंगे, नूनम प्रमत्ते कुरुतः विकर्म, तब तक हम विकर्म में लगे रहेंगे, ये कार्य करते रहेंगे, हमें दंड मिलता रहेगा, शरीर मिलता रहेगा, हम इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे। तो पहला कारण वो बताते हैं कि हमें बारंबार शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है। देखिए, जब इन कारणों को हम सुने तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है। केवल कारण बता देना नहीं, हम ये सोचना है कि अगर कारण है इंद्रिय तृप्ति तो उसका हल क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति को त्यागना। तो अगर हमें इन चक्र से बारंबार बाहर निकलना है तो भगवान की भक्ति करनी है, भागवत धर्म का पालन करना है। भागवत धर्म का वर्णन आगे वो करेंगे कि क्या है भागवत धर्म। तो हमें इस चीज को करना है। तो पहला कारण इंद्रिय भोग। और देखिए, हर व्यक्ति इंद्रिय भोग में आ सकता है। माया इतनी प्रभावी है कि जो व्यक्ति ज्ञान में है वो भी इंद्रिय तृप्ति में पड़ जाता, उसके लिए भी इंद्रिय तृप्ति में पड़ना कोई कठिन नहीं होता। प्रभुपाद लिखते हैं कि माया इतनी प्रभावी, बुद्धिमान व्यक्ति भी, तो भगवान स्वयं इसको भगवद गीता में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो विवेकी पुरुष है, विवेकी अर्थात जो सही क्या है और गलत क्या है को जानता है, इंद्रियाणि प्रमाथीनी हरन्ति प्रसभम मनहा। इंद्रियां इतनी बलवान है कि उस विवेकी पुरुष के भी मन को प्रसभम, प्रसभम मतलब जबरदस्ती अपहरण कर लेती, हरन्ति हरन्ति प्रसभम मनहा। तो हमारे लिए केवल बुद्धि होना, केवल ज्ञान होना ये परिपूर्ण नहीं है, हमें इंद्रिय भोग को त्यागना होगा हर स्तर पर। व्यक्ति इंद्रिय भोग करता है शरीर के स्तर पर, दूसरा भोग करता है मन के स्तर पर, तीसरा भोग करता है बुद्धि के स्तर पर। हमें तीनों स्तरों के आनंद को त्यागना होगा। जैसे आप देखते हैं इस जगत में शरीर के स्तर पर लोग इंद्रिय भोग करते हैं, कुछ मैथुन सुख लेना, कुछ आराम का जीवन बिताना इत्यादि। मन के स्तर पर करते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जैसे कवि इत्यादि। उन लोगों को, उनको अब भौतिक भारी शारीरिक सुख की कामना नहीं है, लेकिन अगर वो कोई कविता कह दे बस उसको आप गुणगान कर दो, उनका जीवन सफल। हाँ, वो कविता लिखते ही इसलिए कि लोग वाह वाह करें। अगर वाह वाह नहीं की, उनको आप पैसे नहीं दो चलेगा, उनको आप खाने को दो नहीं चलेगा, लेकिन बस उनकी कविता सुन लो, ये मन के स्तर की आनंद है। और तीसरा बुद्धि के स्तर का, आप देखते हैं लोग कभी कभी चेस खेलते हैं, चेस जानते हैं ना, शतरंज, घंटों तक ऐसे देखते रहेंगे एक ही जगह, क्या चलना है क्या नहीं करना है, उनको क्या आनंद आ रहा है, एक ही जगह पे बैठे हुए एक ही चीज को देख रहे हैं, इसको बस यहां से यहां हिलाने का आनंद है उनका, ये बुद्धि का आनंद है, उनको बुद्धि के द्वारा आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंद्रिय तृप्ति हर स्तर पर बंद करनी चाहिए। तो पहला कारण है कि व्यक्ति इंद्रिय भोग में आसक्त है, इसीलिए अन्य अन्य शरीर लेता रहता। दूसरा कारण ऋषभदेव देते हैं इस इन तीन श्लोकों में कि व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करता, इंद्रिय भोग में है लेकिन जिज्ञासा नहीं करता, कभी सोचता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, कितने कष्ट में हूं। हम तो सोचते हैं आनंद में है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों को पूछो कैसे हैं, बहुत अच्छे। इतनी आदत हो गई है हम लोगों कहने की कि व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है, उसकी नलियां लगी होती हैं नाक में सब जगह, उसको जाके पूछो कैसे हैं, बोलता है अच्छा, हाउ आर यू, आई एम फाइन। क्या फाइन है, इसी तरह इस जगत में कौन खुश रह सकता है, लेकिन हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा, सब ठीक है। इसीलिए कभी कभी आप लोगों को पूछे कि कैसे हैं, तो आपको कहना चाहिए बड़ा दुखी हूं, कष्ट में हूं, कृष्ण को भूल गया हूं, इसीलिए बहुत कष्ट है, आप प्रार्थना कीजिए मैं कृष्ण को याद कर लूं ताकि थोड़ा बहुत आनंद आ सके। तो ऐसे ये दूसरा कारण ऋषभदेव देते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को अलग अलग शरीर लेने पड़ते हैं। और तीसरा कारण वो देते हैं, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। जिज्ञासा व्यक्ति करता है, लेकिन किसके लिए जिज्ञासा करता है, पशु पक्षी किस लिए जिज्ञासा करते हैं? प्रभुपाद कहते हैं पक्षी रोज सुबह उठकर जिज्ञासा करता है, किस चीज की, खाने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। तो इसीलिए ये कारण है हमारे बारंबार शरीर धारण करने का कि हम आत्म तत्व अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हम लोग बाकी सब काम करते हैं लेकिन आत्म तत्व को देखते नहीं, आत्म तत्व अर्थात अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते। भागवत सुनते हैं रोज, श्रवण करते हैं, भक्ति का पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको जीवन में अपनाने में कमी रह जाती है। जो सुनते हैं उसको अपना नहीं पाते जीवन में, इसीलिए वो व्यवहारिक नहीं होता, वो केवल एक किताबी ज्ञान रह जाता है। आपसे पूछा जाए आप शरीर हैं कि आत्मा है, हम आत्मा हैं, बहुत अच्छा, किताबी ज्ञान है। आपका स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप कृष्ण का दास है, किताबी ज्ञान है। क्यों? क्योंकि हम उस स्तर पर आचरण नहीं करते, ना तो जानते हैं। एक चीज होती है ज्ञान और दूसरा होता है विज्ञान, एक होता है किताबी ज्ञान, दूसरा होता है उसका साक्षात्कार। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें साक्षात्कार नहीं है। ज्ञान है, हम प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को बोल सकते हैं, अरे अब क्या कर रहे हो, सबसे अच्छी भक्ति है, भक्ति करो, ये कहां पड़े हुए हो इंद्रिय तृप्ति में इत्यादि, ज्ञान है। साक्षात्कार का अर्थ उस स्तर पर कार्य करना। तो इसीलिए आत्म तत्व मतलब हमें जानना कि हमारा इस जगत से कुछ लेना देना नहीं है,
ये जगत केवल हमारे प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे हम लोग तात्पर्य में पढ़ रहे थे कि ये शरीर लेना ही नहीं चाहिए था हमें, गलती से मिल गया, दुर्भाग्य से मिला, लेकिन इस शरीर को अब भगवान की सेवा में लगाकर हमें उसका पूर्णता को प्राप्त करना है। तो तीसरा कारण वो देते हैं कि आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, और चौथा कारण वो देते हैं कि उन्हें मेरे प्रति प्रेम नहीं है, अर्थात भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर ये चार चीजों का हम हल ढूंढ लें तो स्वाभाविकता हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। ये 84 लाख योनियों का जन्म चक्र जिसे संसार चक्र कहा जाता है इसको काट सकते हैं। इसको काटने के लिए कौन सी तलवार चाहिए? ग्रंथि बंधे हुए हैं। इन श्लोकों में वो वर्णन करते हैं कि व्यक्ति इतना पागल हो जाता है इंद्रिय तृप्ति के प्रति कि उसकी ग्रंथियां गांठ बंध जाती हैं हृदय में। प्रभुपाद लिखते हैं कि विवाह करता है, पत्नी से आसक्त हो जाता है, गांठ बन गई, फिर बच्चे और एक गांठ, समाज और एक गांठ, इतनी ग्रंथियों को हमने हृदय में रखा हुआ है। तो इन ग्रंथियों को काटने के लिए क्या चाहिए? भागवत के पहले स्कंद में वर्णन किया गया, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदस्तस्य को न कुरियात कथारतिम। कि ये जो ग्रंथि है कर्म ग्रंथि छिंदन्ति, इसको काटना है तो एक तलवार चाहिए, सिना। यद अनुध्यासिना युक्ता, तो सिना ये तलवार क्या होनी चाहिए? भगवान का स्मरण। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविद, यानी बुद्धिमान व्यक्ति काट देते हैं उन ग्रंथियों को, कैसे? को न कुरियात कथा रतिम, भगवान की कथा में रति लेकर उनका स्मरण करके। इसीलिए भगवान की कथा भागवत को सुनना बहुत आवश्यक है। तो ये चार चीजें, तो पहली चीज कर्म ग्रंथि है, इंद्रिय तृप्ति है, उसको हम त्यागें। दूसरी चीज जिज्ञासा करें भगवान के विषय में, फिर आत्म तत्व का ज्ञान लें और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाएं। सच्चा प्रेम कृष्ण के प्रति हो सकता है, अन्य सब काम है। क्यों काम है? क्योंकि हमें कोई ना कोई आशा बंधी रहती है। हम एक दूसरे से प्रेम, तथा कथित जिसको लोग इस जगत में प्रेम कहते हैं, हम प्रेम करते हैं, लेकिन क्या है उसमें? आशा बनी हुई है। हर एक प्रेम में इस जगत के कोई निश्चल प्रेम नहीं है, निस्वार्थ प्रेम नहीं है। एक मां भी जब अपने बच्चे को प्रेम दे रही है, उसकी आशा होती है कि आगे चलकर ये मेरा ध्यान रखेगा। कहीं ना कहीं कोई भावनाएं हैं, कोई आशाएं हैं हर प्रेम में इस जगत के। हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन मान लीजिए जिसको आप प्रेम करते हैं वो व्यक्ति आपका अपमान कर दे, आपको देखे भी नहीं, आपकी निंदा करे, कितना प्रेम करोगे आप उससे? छूट जाएगा प्रेम, क्योंकि हमारे प्रेम का एक भौतिक आधार है, और वो भौतिक आधार क्या है? कामना, आशाएं। हम एक दूसरे से आशा करते हैं कि हम प्रेम करते हैं। व्यक्ति कहता है कभी कभी मैं कुछ नहीं चाहता उससे, बस वो मुझे अच्छी तरह बात कर ले, ये भी कामना है। ये भी तो आशा है। हर प्रेम में इस जगत के आशा है, स्वार्थ है। इसीलिए केवल कृष्ण प्रेम ये निस्वार्थ हो सकता है। भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता मतलब जिसमें कोई हेतु नहीं है। हम कृष्ण से इसलिए प्रेम नहीं करें कि हम कुछ चाहते हैं, हम भौतिक बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, ये भागवत धर्म नहीं है। हम कृष्ण से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हम प्रेम करना चाहते हैं, बस। कोई आशा नहीं है, भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, भगवान ने वैसा क्यों किया मेरे साथ, इतने साल मैंने ब्रह्मचारी रहकर भगवान की सेवा की और फिर उन्होंने ऐसा कर दिया। प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? आश्लिष्य व पादरताम पिनश्चुमा अदर्शनाम मर्महताम करो तुवा। ये प्रेम है, आश्लिष्य व पादरताम पिनश्चुमा, मुझे अपने पांव के तले रौन डाले श्री कृष्ण। अदर्शनाम, दर्शन नहीं देकर मुझे मर्माहत करें, कुछ भी क्यों ना करें, वो मेरे स्वामी है। ये निश्चल प्रेम है और ऐसा प्रेम केवल कृष्ण के प्रति हो सकता है। ऋषभदेव समझाते हैं कि जब ऐसी भावना में हम आगे बढ़ते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र को काट सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। जन्म मृत्यु का चक्र ये आज से नहीं है, लाखों लाखों जन्म बीत गए हैं हमारे इस जगत में और उन सब के कर्मों का फल संचित हो चुका है। ये मत सोचिए कि जो इस जन्म में आपको कर्म का फल मिला है उतना ही है, वो किसी तरह कट जाएगा, शुद्ध हो जाएंगे, नहीं। लाखों लाखों जन्मों के कर्मों के फल संचित होकर पड़े हुए हैं, कब तक मिलते रहेंगे कुछ पता नहीं, और उनको काटने का कोई उपाय नहीं है, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता किसी भौतिक उपाय से, किसी ज्ञान से, किसी कर्मकांड से। कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो हमारे कर्मों को सारे समाप्त कर दे, एक ही यज्ञ है और वो है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए इस अध्याय में भक्ति के महत्व को तो कहते कि मुझसे प्रेम होना चाहिए, अर्थात भगवान से प्रेम। तो ये चार कारण उन्होंने दिए जिससे हम इस जगत में अनेक अनेक योनियों में घूमते हैं और इन चारों कारणों को हमें हल करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से परे जाना चाहिए, भगवत जिज्ञासा करनी चाहिए, आत्म तत्व को जानना चाहिए। आत्म तत्व अर्थात केवल अपने आप को आत्मा के रूप में जानना नहीं है। प्रभुपाद भगवत गीता के प्रारंभ में भूमिका में लिखते हैं कि सनातन धर्म क्या है, तो बताते हैं कि सनातन जीव का, सनातन भगवान से, सनातन आकाश में जो सनातन संबंध है उसको सनातन धर्म कहते हैं। तो इसीलिए आत्म तत्व का अर्थ ये नहीं कि हम केवल अपने आप को आत्मा के रूप में जानें और इस शरीर से परे जाने का प्रयास करें। आत्म तत्व जानने का अर्थ है हम ये जानें, पहली चीज कि हम शरीर नहीं आत्मा है, दूसरी चीज इस आत्मा का अस्तित्व आया कहां से, भगवान से। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, सब हम अंश हैं भगवान के। तो ये दूसरा स्थिति है आत्म तत्व अर्थात पूर्ण आत्म साक्षात्कार की। पहले आत्मा के रूप में जानना, फिर आत्मा का अस्तित्व कहां से आया, कृष्ण से, और उनके अंश के रूप में जानने के बाद तीसरी स्थिति, कार्य क्या है आत्मा का, करे क्या आत्मा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, और दास के रूप में उनकी सेवा करना। तो अपने संबंध को भगवान से जानना और फिर उस संबंध को पुनः स्थापित करके भगवान की सेवा में लगना, ये आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। इसलिए आत्म साक्षात्कार, आत्म तत्व मतलब केवल भगवान, केवल आत्मा को जान लेना नहीं है, और फिर भगवान से प्रेम उत्पन्न करना। और भगवान से प्रेम कैसे उत्पन्न हो सकता है, इस स्थिति में तो हमें कोई प्रेम नहीं है भगवान से, तो कैसे भगवान से प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। बड़ा सरल है, आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलना। जिन लोगों ने उस मार्ग पर चलकर भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर लिया है, हमें केवल उनका अनुगमन करना है, कोई दूसरा मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है, सरल है। महाजनो येन गतः स पन्था, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है अगर हम महाजनों के बताए मार्ग पर चलें। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मार्ग पर चलकर प्रेम को उत्पन्न किया। तो हम भी उस मार्ग पर चलकर उसी प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये दूसरे विभाग में वो चर्चा करते हैं। फिर आगे के तीन श्लोकों में, सातवें श्लोक से लेकर नवें श्लोक तक, वो एक ऐसे ज्ञान को देते हैं जिसमें भक्ति का थोड़ा सा मिश्रण है। तो भक्ति मिश्र ज्ञान का वो वर्णन करने वाले हैं कि ज्ञान है जैसे आत्मा को जान लेना, अपने आप को परे जान लेना, जिसमें प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि ऐसे ज्ञान में भक्ति का स्पर्श मात्र है। तो उसमें वो वर्णन करते हैं कि कैसे इस जगत में अस्तित्व को बनाए रखने का मूल आधार क्या है। प्रभुपाद लिखते हैं स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण। तो ज्ञान दे रहे हैं लेकिन ये आकर्षण बता रहे कि इतना कड़ा आकर्षण है ये कि जिसके द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति भी जो ज्ञान ले लेता है लेकिन पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं है तो वो व्यक्ति भी बहुत सरलता से उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। और ये हमको आप सबको बताने की समझाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है, वैराग्य सब कुछ त्याग दिया उसने, कोई उसके हृदय में कामना नहीं, कृष्ण की प्राप्ति करेगा, 2 साल 3 साल 4th साल विवाह करके क्यों? एक बार एक ब्रह्मचारी से हमने पूछा विवाह क्यों कर रहे हो, तो बोले भक्ति में प्रगति के लिए। हमने कहा 4 साल भी ब्रह्मचारी रह के समझ नहीं आया भक्ति में प्रगति कैसे करनी है। ये प्रभुपाल लिखते कि ज्ञान है उसे, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं हो, ज्ञान आ गया, उसने अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया, उसने सोच लिया जान लिया कि ये जगत ये रहने लायक नहीं और इससे बाहर जाना है तो इस बहुत कड़े आकर्षण से बाहर आना होगा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद लिखते माया इतनी प्रभावी है आ नहीं पाता। तो यहां इस ज्ञान को दिया जा रहा है कि इस जगत में ये आधार है हमारा और उस आधार को काटना चाहिए, ये जानते हुए कि ये जो आकर्षण देह के स्तर पर आकर्षण है ये बहुत क्षणिक है, कितने समय तक रहेगा। और है क्या, आत्मा का आकर्षण नहीं है। हम कहते हैं हम व्यक्ति को प्रेम करते हैं, क्या प्रेम करते हो आप, तो जानते भी नहीं कि वो व्यक्ति है कौन, मृत्यु हो जाती है शरीर वहीं पड़ा रहता है, व्यक्ति चला जाता है, आप कहां जानते हो कौन व्यक्ति था, आपने उसको देखा तक नहीं। इसीलिए प्रेम करना है तो व्यक्ति के गुणों से करना चाहिए, शरीर से नहीं, और वो भी भक्ति के गुणों से, क्योंकि भक्ति के गुण आत्मा के लक्षण है। आत्मा की एक ही पदवी है, बाकी सारी जो पदवियां हैं शरीर की हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ये शरीर की पदवियां हैं, आत्मा की एक ही पदवी है और वो है वैष्णव। इसीलिए अगर हमें सच्चा प्रेम करना है तो वैष्णवता को देखते हुए प्रेम होना चाहिए। हम आकर्षित हों व्यक्ति की भक्ति से, हम आकर्षित हों उसके भक्त के भक्ति के गुणों से, हम आकर्षित हों उसके भक्ति की तपस्या से, ना कि आकर्षित हों शरीर से। तो इसको ऋषभदेव कहते हैं कि ये आधार है और इस आधार के द्वारा हृदय में ग्रंथियां पड़ती जाती हैं, एक के बाद एक ग्रंथि राह, ग्रंथि के बाद ग्रंथि। और फिर उस ग्रंथि को कैसे निकालना चाहिए वो भी वो वर्णन करते हैं, ये अंतिम वर्णन करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी ग्रंथि है, तो कैसे हम इस ग्रंथि को काट सकते हैं, केवल भक्ति के द्वारा। भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं, ज्ञान लेते हैं और ज्ञान के आधार पर इस ग्रंथि को काटते हैं, धीरे धीरे ये ग्रंथि ढीली होती जाती है, ऋषभदेव कहते हैं। और जैसे जैसे हमारी ग्रंथि ढीली होती जाती है हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, वैराग्य आता है हृदय में, सच्चा वैराग्य। वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं, कई लोग वैरागी बनते हैं क्योंकि उन्हें भौतिक जगत में काम नहीं करना। भगवा वस्त्र धारण कर लिया, लोग आएंगे, स्वामी जी आपके लिए भेंट, हाँ बहुत अच्छा है स्वामी जी, प्रसाद स्वीकार कीजिए, बहुत अच्छा है स्वामी जी, को काम नहीं करना है। तो कुछ लोग वैराग्य लेते हैं भौतिक जगत के कष्टों से या काम से बचने के लिए, कार्यों से बचने के लिए, वो पूर्ण वैराग्य नहीं है, क्योंकि वो सच्चा वैराग्य नहीं, उसको वैराग्य नहीं, उसको तो आसक्ति बड़ी हुई है, ये तो आलसपन है। भगवान ने कहा है अर्जुन से भगवद गीता में, आलस को त्यागना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, विगत ज्वर, आलस से परे रहकर भक्ति करनी। तो पहला ये, दूसरा वैराग्य होता है लोगों का जब बहुत सारे कष्ट आते हैं तो कष्ट से जो हृदय में एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, इसका वर्णन 11वें स्कंद में बड़े विस्तार से किया गया, उदाहरण दे दे के कि किसके किसके हृदय में कैसा कैसा वैराग्य आया। एक अवंती ब्राह्मण का वैराग्य, एक वैश्य का वैराग्य, अलग अलग वैराग्यों का वर्णन कि कैसा वैराग्य। तो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें वैराग्य आ जाता है कि ठीक है अभी केवल बस भगवान की भक्ति। कई लोग ऐसा बोलते हैं, ये बहुत कष्ट है पारिवारिक जीवन में, बस ये हो जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाए, सब कुछ छोड़कर कृष्ण की सेवा करूं। लेकिन वो होता नहीं है, बच्चे सेटल भी हो जाते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उनके बच्चे भी सेटल होने तक आते हैं, तब तक व्यक्ति लगा रहता। तो इसीलिए ये दूसरा ये चीज हमें करनी चाहिए कि जानना चाहिए कि इस ये जब ग्रंथियां ढीली हों भक्ति के द्वारा तो हृदय में वैराग्य, और वैराग्य मतलब कृष्ण की सेवा पर आधारित। सच्चे वैराग्य में, वैराग्य की पूर्णता आसक्ति में है। जिस वैराग्य में आसक्ति नहीं है वो वैराग्य नहीं है, वो फाल्गु वैराग्य है। वैराग्य की पूर्णता आसक्ति अर्थात कृष्ण में आसक्ति से है। सच्चा वैरागी वो है, जैसे हम लोग चैतन्य लीला में उदाहरण देखते हैं, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास आंगन में कीर्तन चल रहा है, उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, गृहस्थ है वो, तो कोई सन्यासी नहीं थे, उन्होंने जाकर पत्नी को कहा चुप रहो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। पत्नी ने कहा बच्चे की मृत्यु हो गई मैं कैसे रोऊं, नहीं अगर तुम रोओगी तो मैं भी जाकर मर जाऊंगा, एक कभी बच्चा गया पति भी जाएगा। वो बिचारी को चुप होना पड़ा, कुछ नहीं कर पाए, और फिर जाकर कीर्तन कर रहे हैं। ये वैराग्य है, क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति थी महाप्रभु में। इसीलिए वैराग्य की पूर्णता आसक्ति में है, कृष्ण से आसक्ति में। तो उसको जब हम लोग बढ़ाते हैं तब फिर हम लोग इस प्रकार के जो मैं और मेरा, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं और मेरा को त्याग सकते हैं। हमारे मोह का सारांश है दो शब्दों में, अहम ममेति, मैं और मेरा, बस इन दो शब्दों में ही हमारा सारा अस्तित्व है, सारा भौतिक जगत का कष्ट है। क्यों है? क्योंकि मैं मानता हूं ये मैं हूं और ये मेरा है। तो जनस्य मोहोयम अहम ममेति, जब हम इस मोह से परे जाते हैं, कब जाते हैं? जब ये ग्रंथियां कम होती हैं, ढीली पड़ती हैं, वैराग्य उत्पन्न होता है, और ये मोहोयम अहम ममेति, अहम और मैं से परे जाते हैं, तब जीवन की सार्थकता है। तो ये ज्ञान वो इन श्लोकों में देते हैं, और फिर आगे के अब 10 श्लोक से वो भक्ति का ज्ञान देंगे कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। और बड़े महत्वपूर्ण उन्होंने अंग दिए हैं भक्ति के कि भक्ति का अभ्यास कैसे करना चाहिए, एक एक चीज उन्होंने बताई है, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, आप सब वैरागी हो गए हैं, कृष्ण से आ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की।
निताई गौर प्रेमानंदी। ये भागवत क्लास 8:30 बजे शुरू होती है। आप भागवत के प्रति अपना प्रेम 8:30 बजे से पहले यहाँ आकर दर्शा सकते हैं, नहीं तो बोलने वाले को ऐसा आभास होने लगेगा कि आप लोगों को रुचि नहीं है और फिर हो सकता है इस क्लास को बंद करना पड़े। अगर आप सबकी रुचि नहीं रही तो कृपया रुचि दिखलाने के लिए समय पर आए, ठीक है। हरे कृष्ण।